بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہ یزید کی وہ جفا رہی نہ زیاد کا وہ ستم رہا، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا. ناظرین، سچ ٹیلی ویژن کی جانب سے کربلا درسگاہ انسانیت، اس موضوع پر یہ سیریز پیش کی جا رہی ہے. ناظرین، اگر انسانیت کو اپنی منزل کا پتہ چلانا ہے، اگر انسانیت کو اپنے ہدف کی معرفت حاصل کرنی ہے، اپنی زندگی کا مقصد معلوم کرنا ہے، تو اس میں سب سے بڑا سنگ میل کربلا ہے. جیسا ہم اپنے گزشتہ پروگرامز میں بھی ذکر کر چکے ہیں کہ جتنی اعلیٰ انسانی صفات و خصوصیات ہیں وہ کربلا میں اپنے اوج پر نظر آتی ہیں. اسی پر ہم پروگرام کر رہے ہیں اور ہماری تھیم بھی یہی ہے. آج ایک اور بہت اہم موضوع پر پروگرام ہے اور ہمارے ساتھ ایک نہایت بلند پایا دانشور موجود ہیں، جو معرف اسلامی کا اور پھر خاص طور پر کربلا اور تحریک کربلا اور اس کے محرکات پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید گل محمد نقوی صاحب. آپ مذہبی اسکالر بھی ہیں اور میں یوں کہوں گا کہ رائٹر بھی ہیں، اور کربلا کے حوالے سے آج ہماری گفتگو ہوگی. پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں گل نقوی صاحب آپ کو. ناظرین، آج ہمارا پروگرام کا موضوع یہ ہے کہ کربلا امام حسین علیہ السلام نے بہت منصوبہ بندی کے ساتھ ترتیب دی، اور یہ پوری جو تحریک کربلا ہے اس میں جس جس طرح امام حسین علیہ السلام نے اقدام کرنا چاہا باقاعدہ پلاننگ کے تحت کیا، یہ اچانک نہیں ہو گئی. جناب گل محمد نقوی صاحب جو ابھی ذکر کیا، یہ موضوع ایک تاریخی موضوع ہے اس لحاظ سے کہ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اعلیٰ بلند ترین صفات جو ہیں اس کی تجلی گاہ کربلا ہے، تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ایسے اتفاق سے ہی نہیں ہو گیا، بلکہ امام حسین علیہ السلام نے اس کی منصوبہ بندی کی اور انسانیت کے لیے جو ایک بہترین درسگاہ تشکیل دینی تھی وہ اپنے پورے اہتمام کے ساتھ آپ نے تشکیل دی. آپ اس موضوع کو کیسے بیان فرمائیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. کربلا تو ایک کمال انسانیت ہے.
واہ، بہت خوب، بالکل درست، بالکل.
اور کربلا کو انسانوں نے محدود کر دیا. کوئی کہتے ہیں کربلا ایک دن کی ہے، یعنی کہ عاشور کی،
صحیح.
کوئی کربلا کو 10 دن کا کہتا ہے، کوئی 3.5 مہینے کا کہتا ہے.
تو دراصل وہ ہم نے اپنے ذہن کو محدود کیا،
جبکہ کربلا جو ہے وہ تاریخ ہے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے حق اور باطل کی شناخت کا عمل شروع ہوا ہے.
جی جی جی.
اور اس کے لیے جو قیام کا عمل ہے وہاں سے کربلا کی بنیاد پڑتی ہے.
بے شک، بالکل.
اور کربلا وہ عروج ہے کہ جس پر پہنچ کر کل انسانیت رک جاتی ہے.
ہاں، بے شک،
کہ بس اب جو حق اور باطل کی شناخت ہے اس کے تمام پیمانے سامنے آ گئے.
بے شک، بے شک.
لہٰذا اس سے پہلے کہ اگر ہم یہ بات کریں کہ کربلا کی تحریک کوئی منظم تحریک تھی، خود اگر یہ سوچ لیا جائے کہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اس کو جب اس زمین پہ اللہ نے بھیجا تو کیا وہاں بے ضبط بھیجا،
بہت بے حد بھیجا؟ بہت اہم نقطہ.
یعنی کہ یہ اگر ہم یہ کہیں کربلا کے بارے میں سوچیں کہ کربلا کیا منظم تھی یا نہیں تھی، تو یہ شاید ہماری بہت ہی محدود سوچ ہے. کائنات کل کی کل ایک نظم، ایک تنظیم، ایک حیات،
اور حسین تو امام کائنات
ہیں. تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ کربلا جو ہے ایک غیر منظم تحریک کا؟
آپ نے اس بات کو بہت ہی ایک خوبصورت پہلو سے بیان کیا. بہت اچھا، بہت.
اب یہاں پر
یعنی ممکن ہی نہیں آدمی یہ سوچے. دیکھیے، جب انسان جو ہے وہ غیر منظم نہیں ہے تو، اور کائنات غیر منظم نہیں ہے، تو امام کائنات، اقبال نے کہا نا امام اولی و آخری، تو وہ کیسے غیر منظم ہو سکتے ہیں؟ واہ واہ.
تو اس ضمن میں مادیت کے نظریے سے بھی دیکھا جائے تو جو صرف مادہ پرست ہیں وہ بھی اپنے آپ کی ایک حد تک تنظیم کے قائل ہیں، اور ہم تو الہی انسان اور الہی معاشرہ اور الہی نظام کی تشکیل کی بات کرتے ہیں، اور جو کوئی ہے सिर्फ इंसान को जो खुदावंद मुताल ने वो सलाहियतें दी हैं कि जिसकी बुनियाद पर उसका उसका इम्तहान है, और जिसके नतीजे में उसने अपने आप को साबित करना है कि वो किस किस मुकाम पर है। करबला इंसान को उस मुकाम की हर मंजिल की शनाख्त के लिए एक संगे मील है।
वाह,
लिहाजा
बहुत खूब, बहुत खूब।
करबला के अगर इस वाक़े को हम उन दो सोचों से इब्तदा करें कि जिसमें बादे ख़त्मे मर्तबत नबुवत और इमामत को यकजा ना होना का एक नज़रिया,
सही।
और दूसरा ये कि नबुवत के बाद इमामत उसी का
एक
एक
तसलसल,
तसलसल है,
खत्म नबुवत तो हो गई, लेकिन उस एक
निज़ाम
तसलसल जो है निज़ाम हिदायत
निज़ाम
का
हिदायत जो है
तसलसल जारी है,
वो तो जारी है इंसान पे।
क्योंकि इंसान जब मौजूद है,
जब इंसान
जब
की
इंसान
ज़िंदगी है तो
मौजूद
खुदा की हिदायत और उसका अमल जारी है। इस अमल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो 60 साल जिंदगी
कमो
करबला का
कमोबेश
जो
60 साल।
कमोबेश जो जो ये वक्त है, इसमें खुद वो तमाम दौर तारीख का हुसैन ने देखा जो कि हिजरत के बाद से फतेह मक्का पर, रहलत रसूल पर, माशरे के तगयरात से, और फिर जनाब फातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह की गोद में तरबियत के सांचे में ढले हुए, अली की तरबियत के अंदाज़ से पले हुए, उन्होंने इस माशरे को क्या बेहंगम अंदाज से आगे लेके चलना था?
जी
इसका तो
सर,
सवाल ही पैदा नहीं होता।
बेशक बेशक सर।
आप ये देखिए कि खुद अगर इमाम अलैहिस्सलाम को सिर्फ बराह रास्त करबला में ही हम में ही करबला के में जो आपके बरूद है
जी।
उसको देखें, और उसमें जो आपने आने से पहले जनाबे हनफिया को अपना मकसद बयान किया है,
जी।
तो प्लानिंग की पहली बात क्या है? प्लानिंग की जब पहली बात होती है तो ये जैसे आजकल की दुनिया में हम कहते हैं कि भाई आपका विजन स्टेटमेंट क्या है, आपका
जी।
मिशन स्टेटमेंट
हाँ,
क्या है।
यानी जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या
वही
कोई, तो
कोई भी
विजन
हो,
और मिशन पूछा
विजन और
जाता
मिशन तो
है।
बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए। उस खुतबे में इमाम अलैहिस्सलाम ने अपना मिशन स्टेटमेंट वाज़ेह तरीन
बहुत
अल्फाज में
वाज़े,
बयान कर दिया
बहुत
है।
वाज़े, बहुत वाज़े।
और मिशन स्टेटमेंट क्या है आपका? आपने फरमाया है, क्योंकि कौले मासूम पढ़ना है लिहाजा
जी जरूर,
मैं इसको ज़रूर पढ़ के
बेशक
कहूँगा।
बेशक।
आपने फरमाया कि मैं जनाबे मोहम्मद हनफिया को, ये आपकी वसीयत है कि मैंने अपनी हवा व हवस और किसी मफाद के तहत क़याम नहीं किया। मेरा मकसद जुल्म व फिसाद नहीं है। अब देखिए ये पहले निगेशन है कि क्या क्या नहीं है, और फिर क्या फरमाते हैं कि मैं अपने जद की उम्मत की इस्लाह चाहता हूँ। मेरा मकसद अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर है। ये इमाम का जो है, ये इमाम का मिशन स्टेटमेंट है कि अब इमाम देख चुके हैं कि माशरे की हालत किस तनज़ुली पे पहुंच चुकी है। खिलाफत के दौर में जिस तरह बतदरीज माशरे की तकसीम दो तबकात में और दो वाज़े तबकात में कर दी गई, एक कहा जाए कि वो जो कि एरिस्टोक्रेटिक तबका हो गया कि जिनके मौत पर भी जब उनके विरासत तकसीम हुई तो वो कुल्हाड़ों से तकसीम हुए,
जी। यानी बहरहाल
यानी
एक
एक ये एक ये
जी,
एक एक ये तबका, और दूसरा वो तबका जो कि मुसलसल पिसता चला गया जिससे हकूक सल्ब किए जाते रहे। अब इन सब तबकों को अपना अपना जैसे कहना चाहिए राम बनाने के लिए
जी।
जिस चीज़ को मेयार करार दिया गया वो दीन था।
बेशक। यानी एक मुनसिफाना मुआशरे की तश्कील, उसकी बुनियाद दीन था।
दीन था, और
जी
वो जो बुनियाद थी जिसकी बुनियाद अदल व इंसाफ पर कायम थी, वो बुनियाद जो थी अब उसकी बुनियादें इस तरह मुतजलजिल कर दी गई थी
जी
कि यजीद के नाम पे एक फासिक व फाजिर,
जी
एक हवा व हविस का बंदा,
वो
एक
जानिशीनी रसूल
को
के नाम पर नऊज़
जानशीन
बिल्ला
रसूल
बैठ गए।
पर। जी
अच्छा,
जी
मैं एक चीज़ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा और फिर चाहूँगा कि आप उस पर इजहार ख्याल फरमाएं कि ये जो बाज़ औक़ात ये लिखा जाता है कि यजीद खिलाफ तख्ते हुकूमत पर बैठा और फिर उसने ये ख़त भेजा गवर्नर मदीना वलीद को कि
जी
इमाम
जी
हुसैन अलैहिस्सलाम से कहो कि भाई वो बैत करें, और वहाँ से जो है वो आगाज़ हुआ। तो जो इमाम हुसैन का मंशूर ये मेरे सामने है, खुतबा मिना,
जी
जो यजीद की मौत से 2 साल पहले है,
सही
और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसमें मुआशरे को कैसा होना चाहिए वो बयान कर रहे हैं। ये खुतबा किताबों की सूरत में भी
सही
मौजूद
सही
हैं और नेट पर भी मौजूद है, और ये जो मुस्तनद तरीन किताबें हैं आलम इस्लाम की उनमें मौजूद है ये। उसमें आप, मैं अगर आप इजाज़त
अच्छा जी
दें तो
बिस्मिल्लाह,
एक दो
आप
जुमले
जो
में फरमाऊं कि आप ये कह रहे हैं कि ये बहुत तवील खुतबा है, और
जी
अगर करबला को, उसकी मनसूबाबंदी को, इमाम हुसैन के तहीं उसकी प्लानिंग को और उसके मकासद को समझना हो तो ये खुतबा मिना जो कयामे करबला से तकरीबन 2 साल, 2 से 3 साल के दरमियान, 2 साल, 2 साल के ये पहले का इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मीना के मुकाम पे दिया, वो बहुत बुनियादी अहमियत का हमले और दीबाचे करबला है। तो मैं उससे ऐसे एक जुमले के, आपने इसमें अकायद का जिक्र किया,
जी
मुआशरे का जिक्र किया, अमर बिल मारूफ का जिक्र किया, और
उन
मुआशरे में जो जुल्म हो रहा था, अब उसमें देखें ये
अकदार की
जी अकदार
पासदारी की।
के, आप ये देखिए कि फर्जंदे रसूल ने इसमें ये कहा कि जालिम गवर्नर इस वक्त लगाए गए हैं और वो अवाम के हुकूक सल्ब कर रहे हैं। ये अल्फाज हैं जो मैं
बेशक जी
एग्जैक्ट बयान कर रहा हूँ, और अवाम पर जुल्मो सितम का एक शिकंजा कसा हुआ है। और फिर आगे चल के इसमें कहते हैं कि जिसका मफहूम मैं बयान कर रहा हूँ अब, कि अल्लाह ताला ने उलमा से ये अहद लिया है कि जब
कि
ऐसा
वो
वक्त
वक्त
आए
आए
तो
तो
वो
वो अपने
कयाम
आप को
करें।
कायम
और
करें।
इसके
वाह
बाद ये जो खुतबा मिना है इसमें लोगों के हकूक, अवाम के हकूक, उलमा के हकूक, उलमा के फ़राइज़, माल के फ़राइज़, हुक्मरानों के फ़राइज़, ये सब कुछ दिया
इमाम
है। तो गोया
अलैहिस्सलाम
ये तो
ने
अगर आप करीब तरीन भी कहें तो करबला के कयाम से और बैत के मुतालबे से 2 साल पहले दिबाचा आप
बेशक
फरमा रहे हैं। जी जी आप फरमाइए
देखिए
जनाब।
इमाम अलैहिस्सलाम, और अगर सीरत मासूमीन को देखें तो हर दौर में इन हकूक़ की तशरीह जो मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाई है इससे वाज़ह तरीन तशरीह कहीं भी नहीं मिलती।
सही
जैसे कि जनाब मालिक अश्तर के नाम मौला अली
जी जी
अलैहिस्सलाम
जी
का
बड़ा
ख़त
मशहूर अहदनामा।
जो
जी जी
अहदनामा है, इसी तरह उनकी वसीयतनामा, ख़ुद नहजुल बलाग़ा के तमाम खुतबे और ख़ुद उसमें माशरे की जो तनज़ुली के असबाब हैं उनकी निशानदही और उसमें इंसानियत की बेदारी के
जी
लिए
अच्छा,
अहकाम।
आप, मैं चाह रहा हूँ कि हम यहाँ से आगे बढ़ें और आप ये बताइए कि जिस तरह अब जैसे आपने खुद भी फरमाया और हम अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में बता चुके हैं कि रसूल अल्लाह तो पहले ही खबर दे गए थे
सही
कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के मैदान में शहीद होंगे,
सही
और ये एक दफ़ा नहीं है, एक से ज़्यादा मर्तबा ये बयान हुआ। फिर हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जंग से वापसी पे वहाँ पर रुके, बल्कि अगर तारीख
सही
पढ़ें
सही
तो अंबिया की तारीख में वहाँ
नबी
रुके,
है
लिहाजा पता तो
हर
था।
नबी रुका
लेकिन आप पहले मरहले में
सही
करबला नहीं गए, आप मक्का गए, तो ये बताइए कि किस तरीके से आपने मनसूबाबंदी की और किस तरीके से आप फिर तारीख जो मारूफ
देखिए
तारीख है बताती है
देखिए
कि फिर
इमाम
मक्का से आप
अलैहिस्सलाम
जी।
ने पहले तो ये देखिए कि खुद इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दौर के बाद जो इमाम का सकूत है
जी
वो खुद एक मनसूबाबंदी का, उस बड़ी तहरीक की मनसूबाबंदी का पेश
जी
खेमा है
जिसके दरमियान ये
जिसके
खुतबा
दरमियान
मीना
जी
है।
जिसके
जी
दरमियान
जी
खुतबा है, उसमें आपने मुख्तलिफ मकामात पर और फिर खतूत के ज़रिए और लोगों की बेदारी की मुहिम के ज़रिए,
बेशक
जो
बेशक
जो लोग उनसे मिलने आते थे उनके ज़रिए अपने उस निज़ाम के ख़िलाफ़ होने वाली जो जुल्म व इस्तबदाद है उसका इज़हार फरमाया।
बेशक बेशक
और फिर जिस वक्त ख़ुद मासूम अलैहिस्सलाम के पास वो वक्त आया कि यजीद बरसेदार आया
जी।
और उसने उसने अपना नुमाइंदे से ये
जी जी
कहा कि इमाम से अब आप बैत लें, तो आप देखिए कि इमाम अलैहिस्सलाम एक आपको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का एक अब ज़रा अंदाज़ देखिए कि
जी जी
जब आप बुलाया गया तो आपने ये कहा कि ये बैत लेने का कोई तरीका नहीं
यानी रात के अंधेरे
रात
में
के अंधेरे
बे
में,
हाँ
कि इस तरीके से इमाम ने इसका जवाब तहरीर किया कि तो किसी ऐसे शख्स का तर्फ करवा रहा है जो लोगों की निगाहों से पोशीदा या गायब हो, तो यजीद का तर्फ करवाना चाहता है कि जो कुत्तों और कबूतरों से खेलने में मसरूफ़ है, यानी राग और रंग की महफिलें करता है, रक्स व सुरूर की महफिलें कराता है, अब अल्लाह की बारगाह में मजीद बार गुनाह उठाकर जाने की कोशिश न कर।
सही
यानी कि इमाम अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त जो था इसका एक यानी कि सदराह
जी।
वहीं से बयान कर दी कि ये
और ये बता दिया कि अगर यजीद हाकिम हुआ तो उनका इकदाम क्या
क्या
होगा
होगा।
जी, यानी पहले से ये बात एक किस्म की, यानी कहिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मंसूबा बंदी में तयशुदा थी। जी
फिर इसी तरह मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जब वलीद ने बैत की कोशिश की, तो उस वक्त जो इमाम ने स्ट्रेटजिक स्टेटमेंट दिया है, आपने कहा है कि मुझ जैसा शख्स छुप कर बैत नहीं करता।
ये बड़ी अहम
देखिए,
बात आप कर रहे
यानी
हैं,
कितनी अहम
ये
बात है
हाँ,
कि आपने अब ये भी चाहा कि
यानी
उसकी
जब मदीना के गवर्नर वलीद ने
वलीद
बुलाया
ने
कि भाई
बोला
बैत कर लो, और वो गालिबन रात का अंधेरा था,
रात का
रात के
अंधेरा
वक्त
और रात का
बुलाया,
वक्त
बल्कि
था,
यकीनन जी।
वाकई ऐसा है, और ना ऐसी बैत काबिल कबूल होती है। वो बहन जो कि तन्हाई में अंधेरे में छुप के हो, ये काबिल कबूल नहीं होती। जब तू सब लोगों को बैत की आम दावत देगा और लोगों के साथ हमको भी बैत के लिए दावत देगा, तो उस वक्त हम का एक ही मौक़िफ़ होगा। अब ये अजीब जुमला है, अब जैसे कि हम सब का एक ही मौक़िफ़ होगा,
हम सब का हाँ
एक ही मौक़िफ़ होगा, यानी कि मौक़िफ़ की वजाहत नहीं है। और इस पर जब वलीद ने ये चाहा कि इमाम से इसरार करे, तो आपने वलीद को कहा कि तू जानता नहीं है कि हम ख़ानदान नबूवत मादन रसालत हैं, हिदायत इलाही का हमसे आगाज़ हुआ और हम पर ख़ात्मा
ये
होगा।
बड़ी अहम बात है, बहुत
देखिए,
अहम
जो
बात।
सारी दीन की जो फ्रेमवर्क है, इमाम अपने इन इन जुमलों में वजाहत करना चाह रहे हैं कि मैं कयाम किन मकासद के लिए करूँगा।
जी अच्छा, ये जो इमाम के खुतबात हैं जो तारीख के सफ़ात में महफूज हैं, इनके पीछे जो यकीन कामिल और जो एतमाद और जो अपने मकसद की क्लैरिटी है, वो बताती है कि इमाम के सामने हर चीज़ वाज़े थी और वो अपनी बाकायदा अपनी प्लानिंग के तहत आगे चल रहे थे, यानी यजीद की
वहीं पर
प्लानिंग
वहीं
नाकाम
पर
थी।
वहीं पर आपने
जी
बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ये कह दिया कि मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं करता कर सकता।
बेशक
यानी कि उन्होंने अपना ऐलान बैत से इनकारी की ऐनन वजाहत उसी अंधेरे में कर दी जिस जगह इमाम को ज़बरदस्ती इस करवाने की कोशिश की गई।
अच्छा, जब आप मक्का पहुंचते हैं और मक्का के बाद आम तौर पर एक जुमला तारीख में कहा जाता है कि आपने ऐन 8 ज़िलहिज को, जब लोग हज करने के लिए आ रहे हैं, आपने हज का अहराम तोड़ दिया, ये
जी
बाज़ औक़ात कहा जाता है जुमला,
जी
और उम्र का अहराम उम्रा करके आप आगे चले। लेकिन जो तारीख का तजज़िया करने वाले लोग हैं वो ये बताते हैं कि इमाम हुसैन की ये प्लानिंग का हिस्सा था, आपने नियत ही उम्रे की थी, और आपने ऐन उस टाइम पर कि जब लोग आ रहे थे, लोगों के कुलूब में इर्तियाश पैदा करने के लिए, लोगों को एक हैरान कुन कैफियत से दोचार करने के लिए आप 8 ज़िलहिज को निकले कि लोग तो हज करने के लिए आ रहे हैं और नवासाए रसूल जा रहे हैं।
माशरा
जी
उस
जी
वक्त इस हद तक बेहिस कर दिया गया था
जी जी
और इस कदर जुल्म और इस्तबदाद का दौर दौरा था,
जी
खौफ, इंतशार, तशद्दुद, शकंजा, ये सब इस हद तक जारी था कि लोग सब कुछ चाहने के बावजूद उनमें ये सकत नहीं थी कि वो इस खौफ के सामने खड़े हो सकें। ऐसे मौके पर जब इमाम अलैहिस्सलाम की ये जो प्लान का हिस्सा है जो आपने बात की है, इसमें दोनों बातें हो सकती हैं। चलिए उसी तरह मान लें जिस तरह लोग कहते हैं कि इमाम ने वहीं ये फ़ैसला किया, तब भी इमाम की बसीरत जानती थी कि यजीद इमाम को उस हंगाम में शहीद करवाना चाहता है, और अगर खुदा न खास्ता ये अमल किसी तरीके से सरजद हो जाता, तो वो जो हक़ की वजाहत थी, वो जो معاشرے کو اس کو اس کو سمجھانے کا
وہ
عمل
جو حق
تھا
و باطل کے لشکر لشکروں
علیحدہ کرنا تھا,
استعارہ بننا تھا کہ حسین نے حق کا استعارہ اور یزید نے باطل کے نشانی باطل کی علامت, وہ شاید اس طرح نہ ہو
اس طرح نہ ہو پاتی. لہٰذا امام نے جو خطبہ دیا عرفات میں وہ ایک مارکۃ العرا خطبہ ہے.
یہ تاریخ کے نا کچھ رائٹرز نے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے, شاید میں نے ایک دو جگہ یہ پڑھا کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یزید کی فوجوں نے امام حسین علیہ السلام کو گھیر لیا, ایسا نہیں ہے بلکہ اپنی پلاننگ کے تحت اب امام حسین نے یزیدیت کو گھیر لیا تھا کہ اب وہ حسین علیہ السلام کے شکنجے سے کبھی بھی نہیں نکل سکتی تھی. تو یہ بڑا اچھا جملہ تاریخ.
اسی طرح دیکھیے کہ حسین علیہ السلام کو یزید کی فوجوں کو اس طرف لے کے چلے جس طرف کہ وہ جانا چاہتے تھے.
بے شک
یزید نے ان کے رستے میں سد راہ ضرور کیا. مثال کے طور پر جیسے کوفے جانے کا جو منصوبہ تھا وہ اس اصرار پر بھی تھا کہ جو اہل کوفہ نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنے خطوط لکھے تھے, لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بھی پیش بھی منصوبہ بندی اس طرح کی کہ اپنے بھائی مسلم کو پہلے وہاں بھیج دیا.
بے شک
یہ بھی ہو سکتا تھا کہ امام خود تشریف لے جاتے, لیکن نہیں. یہ اگر جیسے جو ہمارا بنیادی سوال ہے کہ کیا پلاننگ تھی یا نہیں تھی, تو آپ دیکھیے وہاں جناب مسلم کو بھیجا اور جناب مسلم جب وہاں تشریف لے گئے تو یہ حالات امام جناب مسلم کی شہادت کے وقت پیش آئے کہ وہاں کے افراد اس حد تک خوف و ہراس کی حالت میں تھے کہ وہ جا جا کے اپنے لوگوں کو, اپنے بیٹوں کو, اپنی خواتین, اپنے شوہروں کو اس مجمع سے لے کے واپس جاتی تھیں جہاں جناب مسلم
جی موجود
موجود تھے. تو اس سنگینی کے عمل کو جو وہاں ہوا, یہ پہلے انہوں نے واضح کرا دیا کہ معاشرے میں, اس معاشرے میں کیا حال ہے کہ اگر حسین وہاں جائے گا تو یزید وہ کر بیٹھے گا جو کہ وہ چاہتا ہے. لہٰذا امام حسین علیہ السلام یزید کے فوجوں کو کیوں میں کہنا چاہوں گا اس طرف لے کے چلے جہاں کے
جہاں
مکہ مقتل گیا تھی.
تاریخ میں ایک اور واقعہ بھی لکھتا ہے جو امام حسین علیہ السلام کی اس جس کو ہم کہیں کہ ویژن کو ظاہر کرتا ہے یا منصوبہ بندی کو, کہ اور یہ تمام جو تاریخ میں واقعات ملتے ہیں دراصل انسانیت کے درس کے لیے ہیں, درس گاہ انسانیت ہیں, کہ ایک شخص کا خیمہ امام کے خیمے کے قریب لگتا ہے تو امام اسے بلاتے ہیں. تو
ظاہر میں قیام
جی نہیں نہیں اس کے علاوہ ایک اور شخص تھا اور وہ امام کی دعوت پہ لبیک نہیں کہتا لیکن امام کو کہتا ہے کہ میرے پاس ایک بہت زبردست قسم کا تیز رفتار گھوڑا ہے اور گھوڑے کی اس وقت جو اہمیت ہے وہ سب جانتے ہیں کہ یہ آپ لے جائیے. تو امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے ان ریسورسز کی ضرورت نہیں ہے, مجھے حق پرست لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو اس مارکے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسانیت کے لیے ایک درس بن جائیں. تو یہ بھی بات جو ہے امام کی منصوبہ بندی کو
دیکھیے اسی طرح دیکھ لیجئے کہ وہ واقعہ
یعنی آپ کی ایک مرتب فکر کو ظاہر کرتی ہے, یعنی آپ کی فکر ایک مرتب فکر تھی اور ایک باقاعدہ سوچ سمجھ کے بنائی گئی فکر تھی.
دیکھیے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی اسٹریٹجک جو آبجیکٹیوز تھے اس کو اگر دیکھنا ہو تو وہ جو فرزدخ جب رستے میں ملتا ہے اور امام اسے سوال کرتے ہیں, اس وقت جو امام کی اور فرزدخ کی گفتگو ہوتی ہے تو امام نے جب فرزدخ سے پوچھا تو فرزدخ نے کہا کہ لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں جو ہیں وہ حاکم شام کے ساتھ.
یہ تاریخ کا ایک بہت ہی سنگین جملہ ہے جو ایک بہت ہی جس کو کہیے کہ ایک تلخ حقیقت کے جانب اشارہ کرتا ہے.
اب یہ دیکھیے یہاں پر جو بات دیکھنے والی ہے کہ اس کے جواب میں امام نے کیا فرمایا, وہ بہت اہم ہے. امام فرماتے ہیں کہ تو نے سچ کہا. کیا مطلب ہوا؟
یعنی یہ نہیں کہا کہ ہاں,
یعنی کہ حقائق کے تمام جو دریچے ہیں ان تمام دریچوں سے امام آشنا ہے.
بے شک
اس وقت اگر امام کو ہم صرف اس بنیاد پہ نہ دیکھیں کہ آپ جو ہیں مطلب انسان کو امام کو ان مادی ذراؤں سے دیکھیں تو امام کی چشم بینا میں وہ سب کچھ نظر آ رہا تھا کہ جو کہ اس وقت معاشرے میں ہو رہا ہے. مگر ہر چیز یہاں آپ فرماتے ہیں کہ مگر اسٹریٹجی دیکھیے کہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ مگر ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے. یعنی کہ انسان اگر اپنے آپ کو اللہ کو پیش کر دے تو وہی اس کا مونس مددگار ہے اور اللہ ہی کا ہر عمل جو ہے वो इंसानों पर गालिब आता है। जो वो चाहेगा वो होकर रहेगा। हमारा रब हर रोज़ एक तकदीर बनाता है।
वाह वाह।
यहाँ पर अब इसके बाद आपके दो जो जो अकवाल हैं वो इंतहाई अहम है और काबिल तवज्जो हैं कि इमाम की स्ट्रेटजी क्या है। अब फरमाते हैं पहली स्ट्रेटजी, अगर तकदीर इलाही हमारे मकसद के मुताबिक रही, यानी कि इमाम की जितनी स्ट्रेटजी है वो तकदीर इलाही से मरबूत होकर अमल पैरा होने की है, ये इमाम की स्ट्रेटजी है, तो हम शुक्रगुजार होंगे और उसका शुक्र करने के लिए उसी से मदद मांगेंगे। अब दूसरी स्ट्रेटजी, और अगर तकदीर इलाही हमारे और मकसद के दरमियान हायल हो गई और हमारी मुरादें पूरी न हुई, तो जिसकी नीयत, अब देखिए दो यहाँ उन्होंने क्राइटेरिया दिए हैं, आपने फरमाया पहले कि जिसकी नीयत मबनी बरह हो, एक क्राइटेरिया, और दूसरी आपने फरमाया और जिसने तकवा और परहेजगारी को अपनाया हो, उसको इस बात की कोई परवाह नहीं कि क्या होता है। अब देखिए अहम बात यह है कि इस दुनिया की कुल कायनात की तकदीर खुदा बंदे मुताल के हुक्म और असलूब पर है,
बेशक।
लिहाजा हमारी स्ट्रेटजी जो है उस असलूब के साथ कदम ब कदम चलने की है। अगर हम उस पर चलते हैं, अब इसके नतीजे में बज़ाहिरी कामयाबी या ज़ाहिरी नाकामी ये कोई मायने नहीं रखती। और इमाम अलैहिस्सलाम की करबला में जो ज़ाहिरी तौर पर आपकी शहादत वाक़े हुई और जिसको कहा जा सकता है कि एक लिहाज से शिकस्त,
यानी उस वक्त
की शिकस्त, वो शिकस्त नहीं थी, वो ऐन कामयाबी थी जिसने आज तक इंसानियत के लहू में गर्मी की रमक जो है इसी वजह से जारी हो सारी है।
जी जनाब सैयद गुल मोहम्मद नकवी साहब, प्रोग्राम का मौजू तो ऐसा है, आपके पास मैटर भी माशाल्लाह ऐसा है कि ये अभी बहुत देर जारी रह सकता है, लेकिन आपने मुख्तसर वक्त में बहुत ही मौसर अंदाज़ में ये बताया कि करबला एक बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से, मौसर तरीके से बनाई गई एक स्ट्रेटजी थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, और उसका हदफ और मुद्दा ये था कि इंसानियत को उसकी मंजिल का पता दिया जाए और इंसानियत को उसका हदफ़ हकीकी, असल मकसद जो है वो रोशनास कराया जाए। बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब सैयद गुल मोहम्मद नकवी साहब आपका। नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम मुलाहिज़ा किया, इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश यही है कि करबला के वो पहलू आपकी खिदमत में पेश किए जाएँ जो अबदी हैं, जो सरमदी हैं। करबला दरअसल दरसगाह इंसानियत है, करबला वो मैदान है कि जिस मैदान में वो नक्शा हमारे सामने आता है कि जिसके तहत हम अपनी ज़िंदगियां गुजार सकते हैं, गोया करबला हमारी ज़िंदगी के लिए एक बहुत बड़ा संग मील है। हर हदफ, हर मकसद, हर इंसानी सिफत, हर इंसानी खसलत करबला में अपने बुलंद तरीन मकाम पर मौजूद है। इंसानियत को चाहिए कि इस अजीम दरसगाह से रोशनी हासिल करते हुए अपनी ज़िंदगी बसर करे। इस प्रोग्राम से अज़हर अली आबिदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह करबला के एक और ख़ूबसूरत पहलू पर गुफ्तगू के लिए कल इंशाल्लाह सच टेलीविज़न पर फिर हाज़िर होंगे। फ़ी अमानिल्लाह।